दिन भर तारीख 9 सितंबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने दिया अजय भारत अटल भाजपा का नारा, पार्टी ने 2019 के लिए खारिज की विपक्ष की दावेदारी।
ना विपक्ष के पास कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई रणनीति है, विपक्ष हताश है।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा, देश की बेहतरी के लिए मौजूदा सरकार की विदाई जरूरी।
हमारा नारा यही रहा, देश को नेता नहीं नीति चाहिए। अगर वो नीति को लागू करने का प्रयास भी शुरू करना है तो इस सरकार को सत्ता से अलग रखना जरूरी है।
और उत्तर कोरिया ने सालाना परेड में दिखाई सैन्य ताकत, लेकिन नहीं किया बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। स्वीडन में आम चुनावों के लिए मतदान जारी है। सोशल डेमोक्रेट प्रधानमंत्री स्टीफन लोफविन ने भी वोट डाला, हालांकि उनकी पार्टी अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के खतरे का सामना कर रही है। उनकी पार्टी को प्रवासी विरोधी स्वीडन डेमोक्रेट्स से कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री लोफविन ने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव में इसलिए उतरी है ताकि अतिवादी और नस्लवादी पार्टी की सरकार बनाने में कोई प्रभावशाली भूमिका न हो। स्टॉकहोम के इन वोटरों ने अपनी प्रतिक्रिया इस तरह दी। मैं इससे सहमत हूं, पर मुझे ये भी लगता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद शिक्षिका रही हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि स्कूल कितने अहम हैं। स्कूलों में विकल्प हो, शांति हो और सबके लिए अवसर हो। ये थे स्वीडन की एक मतदाता मोनिका बोसेल के शब्द। उत्तर कोरिया ने अपने 70वें स्थापना दिवस पर एक परेड में सैन्य हथियारों का प्रदर्शन किया, लेकिन इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल नहीं थीं। राजधानी प्योंगयांग में टैंकों और हथियारों के बीच हजारों की संख्या में सैनिक परेड करते हुए निकले। समारोह शांति और आर्थिक विकास पर केंद्रित रहा और इसमें डॉक्टरों, नर्सों और इंजीनियरों ने भी हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के वादे के आकलन के मद्देनजर विश्लेषक इस परेड पर विशेष नज़र रखे हुए थे। आरिफ उर रहमान अलवी ने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। पेशे से दांतों के डॉक्टर अलवी ने अमेरिका से पढ़ाई की है और वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। 90 के दशक में दोनों ने साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की स्थापना की थी। जानकार मानते हैं कि अलवी के राष्ट्रपति बनने से इमरान खान की राजनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। अलवी ने अपना राजनीतिक जीवन छात्र नेता के तौर पर शुरू किया था और 5 साल पहले वह पहली बार संसद में चुनकर पहुंचे थे। इथियोपिया में एक समय तक प्रतिबंधित रहे विद्रोही गुट गिनबॉट 7 के नेता बरहानु नेगू का देश वापसी पर जबरदस्त स्वागत किया गया है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक वे निर्वासन में थे। अमेरिका में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे बरहानु नेगू को इथियोपिया में विपक्ष के महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वो राजधानी एडिस अबाबा में गीत गाते और झंडे लहराते समर्थकों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए शहर के सबसे बड़े स्टेडियम के लिए रवाना हुए, जहां वो एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ है और लोग लोकतंत्र के लिए तीव्र इच्छा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहते हुए उनका स्वागत किया कि विचारों की शांतिपूर्ण स्पर्धा से इथियोपिया को बहुत फायदा होगा। अमरीकी ओपन के फाइनल में जापानी खिलाड़ी से हार के बाद अमरीकी टेनिस खिलाड़ी सरीना विलियम्स ने आरोप लगाया है कि महिला होने की वजह से एम्पायर ने उनसे भेदभाव किया। सरीना ने एम्पायर के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मैच में उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ा था। अमरीकी टेनिस चैंपियन बिली जीन किंग ने भी कहा है कि एम्पायर महिला खिलाड़ियों से दोहरे रवैये वाला बर्ताव करते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरीना विलियम्स ने कहा,
I've seen other men call other umpires several things.
मैंने दूसरे पुरुषों को अंपायरों के बारे में बहुत सारी बातें कहते देखा है और मैं यहाँ महिला अधिकारों और समानता के लिए लड़ रही हूँ, और चोर कहने पर गेम छीन लिया जाना मेरे लिए ये एक महिला विरोधी बात थी। जब पुरुषों ने उन्हें चोर कहा होगा तब वे उनसे उनका गेम क्यों नहीं छीन सके। ये थे टेनिस खिलाड़ी सरीना विलियम्स के शब्द। फ्रांस अपने सैन्य सैटेलाइटों को जासूसी से बचाने के लिए उन्हें और आधुनिक बनाएगा और उसके लिए $4 बिलियन खर्च करेगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने फ्रेंच रेडियो पर यह ऐलान करते हुए कहा कि पिछले साल पाया गया था कि रूस ने सैटेलाइट के जरिए भेजे गए संदेशों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन भविष्य की रणनीति का खाका पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय भारत अटल भाजपा का नारा दिया। वहीं पार्टी ने साल 2019 के आम चुनाव के लिए विपक्ष की दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर दिया। बैठक में और क्या कुछ हुआ बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
ये गाना पिछले दो दिनों से दिल्ली की जानी मानी जनपथ रोड पर रह रहकर गूंजता है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ मौजूद भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का उद्घाटन किया था और देश के कई हिस्सों में दलितों के मौजूदा गुस्से और मांगों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी सबसे अहम कही जाने वाली बैठक यहाँ रखने की सोची। साथ ही इस बैठक में जमकर जिक्र हुआ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ। पिछले चार वर्षों में भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं, विदेश नीतियां और कई राज्यों में चुनावी फतेह का जिक्र पहले अमित शाह ने और बाद में खुद नरेंद्र मोदी ने किया। आखिरकार पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र क्या दिया है।
अजय भारत एंड कंट्री विच रिमेन्स विक्टोरियस एंड कैन नॉट बी सब्जुगेटेड। अटल भाजपा ए बीजेपी विच रिमेन्स फर्म अटल।
पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी पार्टी सत्ता को कुर्सी के रूप में नहीं देखती बल्कि सत्ता को जनता के बीच में काम करने का एक जरिया समझती है। पार्टी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष की नीतियों को जनता ने नकारा था। आखिरी दिन की बैठक के बीच में भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों से बात की।
न विपक्ष के पास कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई रणनीति है। आज अगर भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है और सभी इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत आगे बढ़ रहा है और नौवीं अर्थव्यवस्था थी 2014 में, आज छठी अर्थव्यवस्था हो गई और पांचवी एक साल में हो सकते हैं, विपक्ष हताश है।
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर उसे पुराने स्वरूप में लाने से सवर्णों की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता बताई गई है। सवर्णों ने हाल ही में भारत बंद बुलाया था जिसका मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में असर दिखा था। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर भी बोलेंगे लेकिन रविशंकर प्रसाद ने मोदी के भाषण के बारे में जो कुछ बताया उसमें सीधे सीधे SC/ST एक्ट से जुड़ा कोई खास जिक्र नहीं था। विपक्ष और खासतौर से दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस इस बैठक के निशाने पर रही और कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने बाद में इसका जवाब भी दिया।
उनके तो सारी चीजें हैं 2022 में, ये रफेल हवाई जहाज भी 2022 में पूरे आने की बात है। सारी चीजें तो जो है 2019 के बाद का ही उनका प्रोग्राम बन रहा है और इससे पहले जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो सब 2018-19 तक हो रहा था, अब 2022 में हो रहा है। 2019 में इनकी सरकार तो किसी भी कीमत के ऊपर नहीं आती क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो अभी चार साल में, जो साढ़े चार साल में देश का हाल कर दिया, आगे जो है इनको दो महीने भी कोई इनको सत्ता में देने के लिए तैयार नहीं।
भाजपा कार्यकारिणी की बैठक ऐसे समय में हुई है जब इसी साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद अगला लोकसभा चुनाव भी सभी को नजदीक दिख रहा है। शायद यही वजह है कि बैठक की लगभग हर मीटिंग में पार्टी प्रमुख शाह और पीएम मोदी ने बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से दोबारा मेहनत करने को कहा है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि साल 2019 में विपक्ष उसके मुकाबले में नहीं है लेकिन विपक्षी दलों की राय अलग है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी से खास बातचीत में कहा कि आज देश में दलित, गरीब और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश को नई नीति चाहिए और इसके लिए मौजूदा सरकार की विदाई जरूरी है। बीते बुधवार को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठनों ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया था। येचुरी ने इस प्रदर्शन और अपनी पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी बात की। सुनिए ये खास बातचीत।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी आज हमारे मेहमान हैं। हम उनसे भारतीय राजनीति पर, आने वाले चुनावों पर और पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल येचुरी जी, मेरा यही है आपसे कि जो उम्मीद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लोगों को है उसको आप 2019 के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए पूरा करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, थोड़ा संक्षेप में पहले ये बताइए।
पहली बात तो ये है कि 2019 के चुनाव में हमारे हिसाब से दो मुख्य चुनौतियां हैं जिसका सामना करके जवाब देना है। पहला ये कि देश की अखंडता और एकता, खास तौर पे सामाजिक एकता, उसके ऊपर जिस तरीके की हमला जो हो रही है एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, उसे बचकर देश के अंदर जो सामाजिक एकता जो बरकरार रहनी चाहिए उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है।
सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि आपने जो नारा दिया वो राजीव गांधी के नारे को आप दोहरा रहे हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कहा था। आपके पास नया क्या है?
देखिए, नया पुराने की बात नहीं है। आज हमारे देश के अंदर ना दलित सुरक्षा है, ना मुसलमान सुरक्षा है, अल्पसंख्यक कोई भी सुरक्षा नहीं है और गरीब सुरक्षा नहीं। अब इसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता चाहिए। वैकल्पिक रास्ते के लिए वैकल्पिक नीतियाँ अगर ज़रूरी है, इसलिए हमारा नारा यही रहा, देश को नेता नहीं नीति चाहिए। अगर वो नीति को लागू करने का प्रयास भी शुरू करना है तो इस सरकार को सत्ता से अलग रखना ज़रूरी है।
गलती कहाँ पर हुई? जब आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है पश्चिम बंगाल में, उस वक्त आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन इंटरव्यू में, कैपिटलिज्म इज द ओनली वे आउट, अभी कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क में ही हम काम कर रहे हैं, ये बुद्धदेव दा ने ये इंटरव्यू में कहा है।
इसके बारे में पार्टी ने भी उनको क्रिटिसाइज किया, ये पार्टी का राय नहीं है। जरूर कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में देश है, देश का एक हिस्सा बंगाल भी है, लेकिन उसी पूंजीवादी व्यवस्था की नीतियों के विकल्प में वैकल्पिक नीतियां जो लागू किए हैं वही खासियत रहा बंगाल में। भूमि सुधार की बात हो, पंचायती राज की बात हो, वहाँ पर ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात हो, अब ये सब सवालों को छोड़कर कैपिटलिज्म ही एक समाधान है, आंसर है, उसकी निंदा पार्टी ने खुद किया।
आप जो बात करते हैं, आप मेरी मुराद ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की तरह, और सीताराम येचुरी के अलावा भी जो दूसरे नेता हैं, आपसे पहले प्रकाश करात रहे और दूसरे लोग रहे, वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा परसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाते हैं आप सच में, लेकिन आप जनता की जबान में नहीं बोलते हैं। जो एक कांशीराम, एक मायावती जो कहती हैं, आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बात करते हैं या नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उनसे आपका बात करने का तरीका एकदम सेमिनार का है, ये आपकी आलोचना है। क्या इस पर कभी गूढ़ आप चर्चा करते हैं?
ये हम समझते हैं कि गलत एक दुष्प्रचार है और ये गलत आरोप है। अब देखिए, दो दिन पहले दिल्ली में अगर लाखों लोग यहाँ पे किसान मजदूर और मेहनतकश और खेत मजदूर अगर वो आए हैं तो वो किससे प्रोत्साहित होकर आए हैं?
ये ज़रूर कहते हैं लोग कि मोबिलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ उसमें काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील क्यों नहीं होता?
अब ये सबसे बड़ी सवाल हमारे पार्टी के अंदर भी ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। देश के अंदर वर्ग संघर्ष टिका हुआ है दो टांगों पे, एक है आपका आर्थिक शोषण, दूसरा है सामाजिक शोषण। अब सिर्फ एक टांग को लेकर आर्थिक शोषण को अगर आप दौड़ने की कोशिश करें, आप चल भी नहीं पाएंगे। तो अब जब तक ये सामाजिक शोषण के जो संघर्ष हैं वो नहीं जोड़ेंगे आप आर्थिक शोषण के संघर्षों के साथ, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, यह विरोधाभास जो नज़र आता है, वो विरोधाभास नज़र आ रहा है जिसकी जिक्र आपने की। पहले नारा ये हुआ करता था कि हर फैक्ट्री के गेट पे जहाँ पर धुआं निकलती है वहाँ पर लाल झंडा लहराना चाहिए। अब हमारा कहना ये है कि वो तो करना ही चाहिए, हर फैक्ट्री पे होना ही चाहिए, लेकिन हर गांव में जिस कुएं से दलितों को और पिछड़ों को पानी नहीं पीने देते, उस कुएं के ऊपर भी लाल झंडा जब तक नहीं लहराएगा ये भरोसा नहीं आएगा। यही विरोधाभास है जो हम भी समझने की कोशिश की। लोग आएंगे लाखों की तादाद में संघर्ष करने, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन जब वोट का समय आता है उस समय अपने सामाजिक आधार के बीच में बट जाते हैं।
पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 24% जो दलितों का टोटल वोट था उसका 24% मिला है, और दलित समाज कम्युनिस्ट पार्टीज को, CPIM की बात मैं आपसे करूंगा, उसको थोड़ा शक की निगाह से देखता है। जो आपने कहा कितने कम्युनिस्ट पार्टी में दलित रहे, कितने दुसाध, कितने कोयरी, कितने दूसरी जातियों के लोग रहे जो नेतृत्वकारी रहे हैं,
देखिए ये गलत है आरोप में, ठीक है। ऊपरी लेवल के लीडरशिप में देखो तो जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए दलितों की रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। ये जो है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो हमारी प्राथमिकता भी है।
आपको पसंद आए ना आए, लेकिन दलित पक्ष की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है ये। अब आपने कहना शुरू किया सीताराम जी कि लाल सलाम जय भीम की चीज़ें जब आ रही हैं, जब ये कन्हैया कुमार ने JNU में कहना शुरू किया, उसके बाद से नेतृत्व कहाँ है?
देखिए ये भी बात, कन्हैया कुमार भी तो कहा था, वो बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उससे पहले ये नारा आ रहा था नील लाल, लाल झंडा नील झंडा और जय भीम लाल सलाम।
ये कांशीराम के उद्भव के बाद की बात है, उससे पहले नहीं था।
बिल्कुल, आई मीन राजनीति के अंदर ये जो बात आप कह रहे हैं, राजनीति की प्रक्रिया में ये उसी समय हुआ जब बहुजन समाज पार्टी की उभर कर आई और कांशीराम जी जिसको जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया, ये बात ठीक है। लेकिन दलित आंदोलन और दलित मूवमेंटों के बीच में और वामपंथी आंदोलन मूवमेंटों के बीच में ये संबंध आज की बात नहीं है, वो जाति बहुत पुरानी और ख़ासतौर से बहुत सारे प्रांतों में, अब आंध्रा को दीजिए, तेलंगाना आर्म स्ट्रगल जो हुआ था वहाँ पर, और या आप महाराष्ट्र में लीजिए, अब मतभेद जो भी हुए हैं वामपंथियों के बीच में या दलित नेताओं के बीच में वो बात अलग, लेकिन ये कहना है कि दलित विरोधी है वामपंथी, ये हम नहीं मानते।
नहीं, दलित विरोधी नहीं कहा मैंने, कहा वामपंथियों की छवि दलित पक्षी नहीं है कि दलितों के पक्ष की बात करें, जैसे बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे दलितों के पक्ष की बात करती है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कितने दलित नेताओं के साथ संबंध बनाए हैं, वो सरकार में हैं, आपके उस पूरे नैरेटिव से वो गायब लगता है।
अब यही दलितों की ये संगठन है, यही लोग जो संघर्षों में है, जो आज हमें अगर आमंत्रण करते हैं प्रोग्राम में आने के लिए, ये चेंज तो आ रहा है।
1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। RSS के नेतृत्व ने अपने आप को, आप तो सिर्फ सत्ता में दिखते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो गांव-गांव में वो काम करते हैं, तमाम प्रकल्प उनके हैं आदिवासियों के बीच में, सेवा संगठन है, एजुकेशन है, इतिहास है। कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक ज़माने में था कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इप्टा था। आप लोग, मेरा सवाल यह है सीताराम येचुरी, रास्ता भटक कहाँ गए?
भटके नहीं,
ये मानेंगे नहीं आप कि आप रास्ता भटके हैं, लेकिन अगर आप रास्ता नहीं भटके होते तो आज जिस स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी वैसी नहीं होती। आज RSS को देखिए, उनकी राजनीतिक आम को देखिए, BJP को और कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए।
नहीं बिल्कुल, देखिए RSS और उसकी राजनीतिक अंग जो है भाजपा जनता पार्टी, ये RSS की जो है उसकी रीच जो है वो तभी होती है जब वो सत्ता उनके हाथ में होता है। अब देखिएगा, एक बार वो जब नहीं होती तो वहीं पर यही प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो RSS के बारे में एक खुले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, RSS का सबसे बड़ा संगठन पूरे देश में है केरल में, और वहाँ पे देखो क्या हो रहा है राजनीति में, सत्ता में होने का बहुत बड़ा फायदा होता है इस तरीके की पार्टियों को।
जब UPA 1 मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी पार्टी ने इंडो US जो डील हुई थी उसमें सरकार से विड्रॉ कर लिया, उस फैसले को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने सरकार, आप तो सत्ता में थे।
लेकिन वो हुआ क्यों भाई, यही तो बात है।
हम, आप कहेंगे अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ आपने किया, कौन समझता है?
नहीं, वो बात छोड़ी, हमारी वो बात अलग रही। हम कह रहे कि हमारा समर्थन UPA सरकार के लिए था एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर, जो मुद्दा था ही नहीं न्यूनतम कार्यक्रम में, अब इसे बाहर जाकर का है इम्प्लीमेंट कर रहे हो भाई। देखिए उसके अंदर हमारी पार्टी ने खुद सामूहिक तरीके से कई सारे हमारी गलतियाँ और कमजोरियों को पहचाना बाद में, मतलब हमारी पार्टी उसकी जो विश्लेषण करके, तो वो अब बात रही जो अब इतिहास के अंदर चलेगी। अब लोगों का ये कहना है वामपंथी पार्टियों का हट जाना UPA से, जो लगाम जो है वो हट गई, हम दूसरा भी मानते हैं कि ना दुनिया में ना देश में शासक वर्गों के लिए ये जहन में से उतर ही नहीं रहा था कि वामपंथी ताकतों के समर्थन के बिना कोई केंद्र सरकार बन सकती, तो अब इनको कमज़ोर करना उनके लिए अनिवार्य था। अब ये पक्ष भी तो सोचिए, अब
लेकिन अपनी गलती जो है वो दूसरों पर आप कैसे डाल सकते हैं? फैसला आपकी पार्टी का था,
फैसला हमारा था, क्योंकि वो फैसला उनका था कि न्यूनतम कार्यक्रम से बाहर जाएंगे।
प्रकाश करात ने जिस तरह से नेतृत्व दिया था पार्टी को, उस पर कोई मंथन हुआ? उस पर कोई ये कहा गया कि आपकी वजह से पार्टी बहुत पीछे हो गई है?
देखिए, हमारे पार्टी के अंदर व्यक्तियों के ऊपर कोई इस तरीके की मतलब जिम्मेदारी कि आपके वजह से ये गलती होगी वो कभी नहीं होता, क्योंकि
तो परिस्थितियों को दोष डाल देते हैं।
परिस्थितियां नहीं, वो होता है सामूहिक कमिटियों की निर्णय पर, क्योंकि ये सब निर्णय जो सामूहिक लिए जाते हैं, निर्णय गलत हो सकते हैं, तो वो सामूहिक तरीके से पार्टी कहेगी कि ये निर्णय जो लिया गया गलत है। आप जिसकी बात करो कि जिस तरीके से वो सपोर्ट विड्रॉ किया था यूपीए वन के बारे में, अब उसके बारे में अब देखिए हमारी समीक्षा में कलेक्टिव जो बॉडी रखी, 7 चीज़ें हैं जहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर गलतियाँ हुई है।
तो आप कांग्रेस के साथ अलायंस बनाएंगे, वो तो तय हो गया है।
अब कांग्रेस के साथ कहाँ पर रहेगा कहाँ पर नहीं रहेगा वो तय होगा स्टेट के लेवल पर, क्योंकि देश के बारे में एक चीज़ समझिए राजेश जी, कि कभी भी एक कोई महागठबंधन पहले से नहीं होता है देश के स्तर पर। आपके जनता पार्टी हो 77 में वो सरकार जो बनी, या आपके बीपी सिंह साहब की सरकार हो, या देवगौड़ा साहब की सरकार हो, या मनमोहन सिंह साहब की सरकार हो, जो गठबंधन बनाई उस सरकारों को, वो गठबंधन का सृष्टि हुआ है चुनाव के बाद ही। पहले होता है ये सभी गठबंधन, वो होते हैं आपके सूबों में, और वो हो रहा है। अब जो भी जो बनेगा वो 2019 में चुनाव के बाद बनेगा, लेकिन उससे पहले ये जो जैसे मैं कह रहा था कि वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो बीजेपी के खिलाफ।
इस ज़माने में 2018 में आप सोशल मीडिया पे बहुत मिनिमम प्रेजेंस आपकी है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप भी सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, आप ये टाइम वॉर्प में 1970 के दशक से बाहर कब निकलेंगे? ये क्रिटिसिज्म आपका बहुत तगड़ा है कि आपके कोई मीडिया सेल नहीं है।
नहीं, मीडिया सेल है, हमारा सोशल मीडिया सेल है, और पूरे स्टेटों में सोशल मीडिया सेल से अपने अपने लैंग्वेजेस में जो चल रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि जितनी मजबूत नहीं है जितना बीजेपी के मुकाबले आप कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप होंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, आप होंगे प्रधानमंत्री इंडिया के, तो फिर ट्विटर फॉलोइंग तो होगा ही ना भाई।
हमेशा नरेंद्र मोदी ट्वीट नहीं करते हैं, एक आदमी बिहार से करेगा उस पर दूसरा जवाब देगा, एक गिरिराज सिंह वहां ट्वीट करेंगे, उन अपनी राजनीति को बढ़ाते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाते हैं वो आगे। आपके एजेंडा को आप जो जय भीम लाल सलाम भी कह रहे हैं, अगर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए कहां ट्विटर है कहां फेसबुक है?
नहीं है, लेकिन हमारे मेरे पर्सनल ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट में जाइए, या पार्टी के फेसबुक अकाउंट और ट्विटर में जाइए। लेकिन जो आप कह रहे हो कि उसके अंदर वो कमजोरी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क जो बनाने जो अब ये सिर्फ ट्विटर और फेसबुक से तक सीमित नहीं है, ये नेटवर्किंग जो होनी है सोशल मीडिया,
इंस्टाग्राम के बारे में तो आप सोचते भी नहीं होंगे इंस्टाग्राम के बारे में, स्नैपचैट के बारे में।
अब वो तो उसकी बात जो है, पहले ये व्हाट्सएप की नेटवर्किंग तो करें, और जिसके अंदर अभी जो लगे हैं वो इमीडिएटली आप देखेंगे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन मानता हूँ मैं इसके अंदर कमजोरी बाकियों के मुकाबले पार्टी की है, लेकिन वो जल्द ही वो दुरुस्त हो रही है।
सीताराम येचुरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी समय दिया हमको, मैंने आज छीन लिया आपसे समय दरअसल, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बीबीसी से बात करने में हर वक्त मज़ा आता है राजेश जी, थैंक यू।
ये थे सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, उत्तर कोरिया ने आज अपनी सालाना परेड के जरिए दमखम का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार की परेड बीते सालों से अलग थी। क्या था अंतर, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी।
उत्तर कोरिया ने अपने 70वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी प्योंगयांग में सालाना परेड निकाली। इस बार ये परेड बीते सालों के मुकाबले अलग थी। परेड में हजारों सैनिकों ने मार्च किया, टैंकों का प्रदर्शन किया गया, कई आधुनिक हथियारों की नुमाइश की गई, लेकिन पिछली परेड का हिस्सा रही कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें इस बार नहीं दिखी। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये मिसाइलें अमरीका तक मार कर सकती हैं। विश्लेषकों का आकलन है कि अगर परेड में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन करता तो इसे उकसाने वाला कदम माना जाता। उत्तर कोरिया के सैन्य हथियारों और परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को जानने के लिए परेड पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने इस कार्यक्रम के दौरान कोई भाषण दिया या नहीं। उम्मीद जताई जा रही थी कि किम कोरिया युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। ये युद्ध एक सैन्य समझौते के बाद 1953 में खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक किम इस बात से परेशान हैं कि उनकी सकारात्मक कोशिशों पर दुनिया भरोसा नहीं कर रही है। जून में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने को लेकर एक समझौते पर दस्तखत किए थे। बाद में दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौता वार्ता में रुकावट डालने का आरोप लगाया। हालांकि दोनों ने ये भी कहा कि वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश जी, क्या खबरें हैं आपके पास आज?
जी वात्सल्य, सबके नजरे भारत और इंग्लैंड के बीच कैनिंगटन ओवल में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच पर, जहां आज खेल के तीसरे दिन फिलहाल इंग्लैंड की ओर से एलिस्टेयर कुक अपने क्रिकेट जीवन की आखिरी पारी खेलने उतरे हैं। फिलहाल वो 4 रन बनाकर नाबाद उनका साथ दे रहे हैं। केटन जेनिक्स 2 रन बनाकर, यानी इंग्लैंड का डूबता सूरज यही कहा जाएगा। लेकिन अगर इनके व्यक्तिगत करियर की बात की जाए तो एक तरह से एक ऐसा सूरज जिसने अपनी रोशनी हर तरफ फैलाई। दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो हनुमा विहारी एक ऐसा भारत का उगता सूरज जिसने भारत को इस टेस्ट मैच में बहुत बुरी स्थिति से निकालने में मदद की।
लेकिन आप दिन की सबसे बड़ी पारी की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में श्रोता भी जानना चाह रहे हैं। एक गेंदबाज जिसको आपने 4 टेस्ट मैच में बैठा ही रखा, वो इस मैच में खेलने उतरा, पहले गेंद से कमाल किया और फिर बल्ला भी दिखाया और उसके बाद बल्ला तलवार की तरह घुमाया।
जी हाँ, वो उनका जाना पहचाना अंदाज है, रविंद्र जडेजा। और दरअसल जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, उसके बाद 86 रन नाबाद रहते हुए बनाए, छक्का भी लगाया, 11 चौके लगाए और एक तरह से देखा जाए तो 160 रन पर 6 विकेट।
और वो छक्का भी जेम्स एंडरसन के सिर के ऊपर से बॉल गई।
जी हाँ, लहराता हुआ, और उससे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफ़ी हद तक सुधरा। और अगर देखा जाए तो आप देखिए 292 रन भारतीय पारी ने बनाए पहली पारी में और 132 रन एक तरह से भारत के आखिरी 4 विकेट ने जोड़े, जो एक तरह से संदेश था कि विकेट अब धीरे धीरे काफ़ी हद तक ठीक होता जा
रहा है। लेकिन जो भारत का टॉप ऑर्डर है इस पूरी सीरीज में इस तरह का संदेश नहीं ले पा रहा है। जो आपके ओपनर्स हैं वो रन नहीं बना रहे, पिच इतनी आसान लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने दिखाया, हनुमा विहारी पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो आके हाफ सेंचुरी बनाते हैं, ये टॉप ऑर्डर को अचानक हो क्या गया है? रहाणे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
दरअसल एक तरह का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला हुआ था क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं मिली। शिखर धवन ने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, केएल राहुल का भी हाल यही रहा, मुरली विजय को तो टीम से बाहर होना पड़ा और फिर चेतेश्वर पुजारा को पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, फिर एक मैच में शतक, उसके बाद जब जीतने के लिए स्कोर का पीछा था तो वहाँ कुछ खास नहीं। तो कुल मिलाकर मध्यक्रम जिस तरह से लड़खड़ाया, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर बेन स्टोक और जेम्स एंडरसन की, जिस तरह से उन्होंने वक्त पर बहुत ही सटीक स्विंग गेंदबाजी की और फिर फील्डर्स ने भी साथ दिया। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट मैच फिलहाल 40 रन से भारत पहली पारी में जरूर पिछड़ा, लेकिन काफी अच्छी स्थिति में अब दोनों टीमें कही जाएंगी,
यानी मुकाबला बराबरी का है। बहुत शुक्रिया आदेश जी।
और बस जाने से पहले एक 10 सेकंड आपके और, क्योंकि आज नजरें रहेगी यूएस ओपन में जहां पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा अर्जेंटीना के युआन मार्टिन डेल पोत्रो और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच।
जी बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त इस अपडेट के लिए। और चलते चलते मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। स्वीडन में आम चुनावों के लिए मतदान जारी है। सोशल डेमोक्रेट प्रधानमंत्री स्टीफन लोफिन ने भी वोट डाला, हालांकि उनकी पार्टी अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के खतरे का सामना कर रही है। उत्तर कोरिया ने अपने 70वें स्थापना दिवस पर एक परेड में सैन्य हथियारों का प्रदर्शन किया, लेकिन इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल नहीं थी। आरिफ उर रहमान अलवी ने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। पेशे से दांतों के डॉक्टर अलवी ने अमेरिका से पढ़ाई की है और वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।